ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवास्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितास्य यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद् वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदसुमङ्गलाः क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः किरातभूणान्ध्रपुलिन्दपुल्कषा आभीरशुम्भायमनोः खसादया यन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभवैष्णवे नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत् सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्रीयद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय दशम स्कंद अध्याय 30 श्लोक संख्या 28 यह जो प्रसंग है राष्ट्रपंचोध्याय से है जब भगवान श्रीकृष्ण गोपियों के बीच से अंतर्धान हो गए तो गोपियां कृष्ण विरह से व्याकुल हो गए तो श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी जी बहुत सुंदर वर्णन किए हैं अन्याराधितो नूनम् भगवान हरिरीश्वर है यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामन्यद्रः अन्याराधितो नूनम् भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामन्यद्रः अन्याराधितो नूनम् भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामन्यद्रः। पुनरावृत्ति करें। अन्याराधितो नूनम् भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामन्यद्रः अन्याराधितो नूनम् मान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः अन्याराधितो नूनम् भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः माताजी लोग अन्याराधितो नूनम् अनया उसके द्वारा आराधिता है भली भांति पूजित नूनम निश्चय है भगवान भगवान हरि है कृष्ण ईश्वर है परम नियंता यत इतना ही ना हमको विहाय त्याग कर गोविंद है भगवान गोविंद प्रीत है प्रसन्न याम जिसको अन्यत ले गए रहा है एकांत स्थान में। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। गोपियों ने कहा इस विशिष्ट गोपी ने निश्चित ही सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद की पूरी तरह पूजा की होगी क्योंकि वे उससे इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने हम सबों को छोड़ दिया और उसे एकांत स्थान में ले गए। पीछे से पुनरावृत्ति करें। इस विशिष्ट गोपी ने निश्चित ही सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद की पूरी तरह पूजा की होगी क्योंकि वे इससे इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने हम सबों को छोड़ दिया और उसे एकांत स्थान में ले गए। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की बहुत सुंदर व्याख्या है। आराधिता शब्द श्रीमती राधा रानी के लिए आया है। उनकी टीका है कि श्री सुखदेव गोस्वामी ने उसका नाम गुप्त रखने का भरसक प्रयास किया है किंतु उनके मुख रूपी चंद्रमा से वह स्वतः प्रकाशित हो उठता है। उन्होंने राधा का नाम ले लिया। यह श्रीमती राधा रानी की कृपा है। अतः आराधिता शब्द राधा के सौभाग्य को सूचित करने वाला दुंदुभि घोष है। यद्यप गोपियां श्रीमती राधा रानी के प्रति श्यालु लगती हैं, किंतु वे यह देखकर पुलकित थीं कि राधा ने श्रीकृष्ण को बंदी बना लिया था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने श्रीलरूप गोस्वामी कृत श्री उज्जवल नीलमणि में श्रीमती राधा रानी के पद चिन्हों का जो विस्तृत वर्णन है उसे उद्धृत किया है। उनके दाएं पांव के अंगूठे के नीचे जौ का चिन्ह है, उसके नीचे चक्र, चक्र के नीचे छत्र, छत्र के नीचे वाजुबंद अर्थात कंगन है, और उनके पांव के बीच से एक खड़ी रेखा अंगूठे तथा दूसरी अंगुली के बीच तक जाती है। बीच की अंगुली के नीचे कमल है और उनके उसके नीचे ध्वजा है, और उस ध्वजा के नीचे लता है जिसमें एक फूल लगा है। उनके पांव की छिगुनी के नीचे अंकुश हैं और उनकी एड़ी में अर्धचंद्र है। इस तरह है उनके बाएं पांव में 11 चिन्ह हैं। उनके दाहिने पांव के अंगूठे के नीचे शंख है और उसके नीचे भाला है। उनके दाएं पांव की छिगुनी के नीचे यज्ञवेदी है जिसके नीचे कुंडल है और कुंडल के नीचे फिर भाला है। दूसरी तीसरी चौथी अंगुलियों तथा छिगुनी के नीचे पर्वत का चिन्ह है जिसके नीचे रथ है और एड़ी में मछली का चिन्ह है। इस तरह श्रीमती राधा रानी के चरण के तलवे में 19 विशिष्ट चिन्ह है। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। तो आज भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति रास रसेश्वरी वृंदावनेश्वरी मखेश्वरी क्रियेश्वरी सुरेश्वरी सौधेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी परमाणु शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद कारणेश्वरी श्रीमती राधा रानी जी का आविर्भाव दिवस है। श्रीमती राधा रानी जी के जन्म महोत्सव के उत्सव पर आप सभी देवियों एवं सज्जनों का वैष्णी एवं वैष्णवों का शुभागमन हुआ है। हम आप सभी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं और साथ ही साथ भगवान श्री श्री राधा रास बिहारी जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् भाग् दुःख भवेत्। आप सभी सुखी हों, निरोग रहें और आपके जीवन में भगवान की भक्ति वैसी लहलहाती रहे जैसे श्रावण एवं भादों के महीनों में खेतों में फसलें लहलहाती रहती हैं। इन्हीं मंगलमयी कामनाओं के साथ अब हम आपका ध्यान श्रीमती राधा रानी जी के आविर्भाव तिथि की तरफ ले चलते हैं। आप ध्यान से श्रवण करें। प्रेम से बोलिए श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की जय। सर्वप्रथम हम ये श्रवण करेंगे कि गोलोक धाम में किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के अंग से श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव हुआ, तत्पश्चात इस भूलोक में फिर कैसे श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य हुआ, उस प्रसंग को श्रवण करेंगे। गर्ग संहिता में गोलोक खंड में श्रीमती राधा रानी के बारे में बहुत सुंदर गर्गाचार्य जी ने वर्णन किया है। श्री राधा रानी जी का आविर्भाव सर्वप्रथम गोलोक में हुआ। गोलोक बिहारी श्री कृष्ण चंद्र के वाम भाग में एक कंपन हुआ और उसी से एक कन्या का आविर्भाव हुआ, जो कन्या लगभग 16 वर्ष की थी और वह 16 श्रृंगारों से सुसज्जित थी। और राधा नाम इसलिए उनका हुआ कि वह रास मंडल में जो ही प्रकट हुए ते वही पुष्प लेकर और दौड़कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित किए, इसलिए उनका नाम राधा हुआ। भगवान की पूजा करने के लिए वे धावित हुई अर्थात दौड़े। कहने का भाव यह है कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक हैं। गीता में कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मुझसे परे कोई तत्व नहीं है। लेकिन लीला करने के लिए भगवान एक से दो हुए, एक से दो हुए। स्वयं राधा रानी के रूप में भगवान कृष्ण ने अपना विस्तार किया, अपने वाम भाग से वे प्रकट किए। और एक बात अवश्य याद रखें, हमारे गोस्वामियों ने वर्णन किया है कि श्रीमती राधा रानी की जो अवस्था है, वे सदैव किशोरी वेश में रहती हैं। 14 वर्ष 2 महीना 15 दिन इसी अवस्था में वे सदैव रहती हैं। 14 वर्ष 2 महीना 15 दिन और भगवान श्री कृष्ण 15 वर्ष 9 महीने 7.5 दिन इसी अवस्था में रहते हैं। अब इसे आगे नहीं जाते। नव जौवनम च है अनादिकाल से, जिसके आदि का और अंत का कोई पता नहीं है उसको अनादि कहा जाता है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, जब पता लगा लेंगे तो फिर भगवान की विशेषता क्या रह जाएगी। भगवान अनंत हैं, उनको हम सीमा के अंदर नहीं बांध सकते, असीम है, ससीम नहीं कर सकते। तो सदैव भगवान, इसलिए कहा जाता है कि 16 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, नव जौवा नमच, उनको किशोर और किशोरी कहा जाता है। भगवान को कभी मूछ दाढ़ी नहीं आती है, उनके बाल कभी नहीं पकते हैं, अनादि काल से हमेशा नवजौवन अवस्था में रहते हैं, यही इनका स्वरूप है। जैसा कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में वर्णन किया है, तो श्रीमती राधा रानी को भगवान ने स्वयं प्रकट किया और इसी अवस्था में थी। 14 वर्ष 2 महीने 15 दिन ब्रह्मवैद पुराण में बहुत सुंदर वर्णन है, राशे संभूय गोलोके साधाव हरे पुरा तेन राधा समाख्यात। इनका राधा नाम क्यों पड़ा? राजकोपनिषद में वर्णन है कृष्णेन आराध्यत इति राधा, कृष्णम समराधयति सदेति राधिका। श्री कृष्ण इनकी नित्य आराधना करते हैं, इसलिए इनका नाम राधा है। और श्री कृष्ण की ये सदा सम्यक रूप से आराधना करती हैं, मतलब पूजा करती हैं, इसलिए राधिका नाम से ये प्रसिद्ध हुई है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कृष्ण वंश प्रतिरूप करे आराधने अतएव राधिका नाम पुराणे बखाने। आदि लीला के 4वें अध्याय में बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। ये अपनी पूजा से भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करती हैं। भगवान श्री कृष्ण की सारी इच्छाएं श्रीमती राधा रानी के द्वारा पूरित होती हैं, इसलिए इन्हें पुराणों में राधिका नाम से बखान किया गया है। राधा जो नाम है वह आराधना शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है पूजा। अतः जो श्री कृष्ण की पूजा में सरोपरी हो वह राधिका सबसे बड़ी सेविका कहलाती है। और श्रीमती राधा रानी की समता कोई नहीं कर सकता है। और राधा नाम से, राधा नाम सुनकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे ब्रह्मवेद पुराण में कहा गया है कि राशब्दम कुरुतस्त्रस्तो ददामी भक्तिम उत्तमम धाशब्दम कुरतः पश्चात यामी श्रवण लोभतः। जिस समय किसी के मुख से रास सुन लेता हूँ तो मैं उसे उत्तम भक्ति प्रदान करता हूँ, और जब कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो उसको श्रवण के लोभ से मैं उसके पीछे पीछे दौड़ जाता हूँ। इसलिए सभी लोग बोलते हैं जय जय श्री राधे। अब प्रश्न यहाँ उठता है, बहुत सुंदर भाव है। यहाँ पर श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी ने अन्य आराधितो नूनम भगवान हरिश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीति आमन्यद्रह, अप्रत्यक्ष रूप से श्रीमती राधा रानी का नाम लिया है। बहुत से लोग चर्चा करते हैं कि श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद्भागवत महापुराण में श्रीमती राधा रानी का नाम क्यों नहीं इंगित किया है, स्पष्ट रूप से कहीं उद्घोष नहीं है। लेकिन याद रखें, विद्वानगण इसका उत्तर ये देते हैं कि जो श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी हैं, ये गोलोक धाम के वासी हैं और ये श्रीमती राधा रानी के लीला सुख हैं, संदेशवाहक हैं। जब भगवान श्री कृष्ण का और श्रीमती राधा रानी का इस भूलोक में अवतरण होने का समय आया तो उस सुख पक्षी भी बोले, वो तोता ने कहा कि हम भी भूमंडल पर चलेंगे, भूलोक में चलेंगे और आपकी कीर्ति का प्रचार प्रसार करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, तो ऐसा ही होगा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तो श्रीमती राधा रानी का जब आविर्भाव हुआ भगवान कृष्ण का पहले, तो बाद में सुखदेव गोस्वामी जी, आप सभी जानते इस कथा को, जब शिव जी पार्वती जी को कथा सुना रहे थे तो सुख पक्षी के रूप में, अंडे के रूप में एक सुखी के गर्भ में प्रविष्ट हुए और वह जब गर्भ से अंडा प्रस्फुटित हुआ तो उससे एक पक्षी का जन्म हुआ, सुख पक्षी। और कथा सुन रहे थे, शिव जी पार्वती जी को कथा सुनाए, पूरी कथा सुना दी है, पार्वती जी को समाधि लग गई, आप सभी सुने इस कथा को। तो हुंकारी कौन भर रहा था, वही तोता सुख पक्षी जो पूरी कथा सुन लिया था, तो अमर हो गया था, अब तो उनको कोई मार नहीं सकता। शिव जी ने कहा कि तुमने पीछे से कथा सुना, अपराध किया है। ये लीला है उनकी, शिव लीला। तो वे उस पक्षी को मारने के लिए दौड़े त्रिशूल लेकर के और वहां से वे उड़े, शिव जी का त्रिशूल पीछा किया, वह तोता उड़ते उड़ते चला गया वद्रिका आश्रम। और देव जग से श्रील वेद व्यास जी की पत्नी वाटिका के मुख में उवासी आई, उसने मुंह को ऐसे फैलाया और उसी में वो पक्षी प्रविष्ट हो गया। और तब शिव जी वहां से लौट आए, वे समझ गए कि हम इन्हें मार नहीं सकते, कथा सुनकर के अमर हो गए हैं। तो 16 वर्ष तक वो मां के गर्भ में रहे, वेद व्यास जी निवेदन किया आप लौट आइए, आप बाहर आइए, नहीं आ रहे थे। फिर भगवान आए, कृष्ण आए और बोले कि मेरी माया आपको नहीं व्यापेगी, आप बाहर आइए। तब सुखदेव जी अब पक्षी के रूप में थे, अब वो पुरुष के रूप में हो गए। 16 वर्ष नवजौवन अवस्था में वे प्रकट हुए और प्रकट होते ही सीधे जंगल की ओर चल दिए, जंगल की ओर चल दिए। वेद व्यास जी ने उनका पीछा किया, सुखदेव गोस्वामी वृक्षों में प्रविष्ट होकर के उत्तर दिए, ये ब्रह्मवादी हैं, इनका पीछा छोड़ दीजिए, आप लौट जाइए। तब ये लौट आए और सुखदेव गोस्वामी वन में चले गए। इस प्रसंग को आपने सुना है कि इनकी लालसा रह गई कि मैं अपने पुत्र को पढ़ाया नहीं, पढ़ाने की लालसा रह गई, अपने शिष्यों को भागवतम का श्लोक रटवाए और उजाकर श्लोकों को गाते थे, सुने और आकर्षित हो गए, जैसे चुंबक लोहा को खींच लेता है वैसे उनको खींच लिया। और पूछे कि आप लोगों ने कहाँ से सुना है, कौन पढ़ा है आपको, इस श्लोक कहाँ से श्रवण किए, हम भी श्रवण करेंगे। तो कहे हमारे गुरुजी सुनाए हैं, क्या नाम है उनका बताए, इसलिए वेद व्यास जी। तो वे भी आए और अपने पिताजी से पूरी भागवत सुने और वही सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को पूरी भागवती कथा सुनाए। तो वर्णन ये आता है कि क्यों नहीं नाम लिए, इसमें दो भाव लोग बताते हैं। एक तो कहते हैं विद्वान लोग कि राधिका जी के गुरु थे हमारे श्री सुखदेव, सुख पक्षी के जो गुरु हैं कहते हैं वो श्रीमती राधा रानी है, इसलिए उनका गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, कुछ विद्वानों का कथन है। अच्छा, दूसरी बात है कि राधा नाम इतना सरस लगता था श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी जी को, अगर वे राधा शब्द कह देते थे तो उनको 6 महीने की समाधि लग जाती थी। तो जब राधा जी का पूरा नाम उच्चारण करते तो उनको समाधि लग जाती, तो फिर परीक्षित महाराज को कथा कैसे श्रवण कराते, नहीं सुना पाते, समाधि लग जाएगी तो फिर सुनाते नहीं। इसलिए श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी ने स्पष्ट रूप से श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं लिया है। और उनको तो समाधि लग जाती थी, और हम लोग तो राधे गाते रहते हैं, आप सभी गाते हैं, भक्त लोग राधे राधे गाते हैं, लेकिन वो अवस्था तो नहीं आती है। श्रीपाल सुखदेव गोस्वामी सिद्ध योगी थे, गोलोक धाम के वासी थे। और चेतन महाप्रभु देखिए महाभाव में बिल्कुल विवल हो जाते थे। तो श्रीमती राधा रानी माने सुखदेव गोस्वामी को राधा नाम लेने से स्वाभाविक समाधि लग जाती थी, इतना उनको प्रिय नाम था। तो इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से उद्घोष नहीं किया है। इसका उत्तर विद्वान ये देते हैं, और मुख्यतः ये बातें हैं, ध्यान से सुनिए। श्रील वेद व्यास जी ने श्रीमद भागवत महापुराण के महात्म्य में सबसे पहले जुगल जोड़ी माने भगवान श्री श्री राधा रास बिहारी जी को वो प्रणाम किए हैं। इस श्लोक को आप सभी जानते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री कृष्ण विद्वान लोग अर्थ करते हैं कि श्री कृष्ण, इसमें जो श्री शब्द है वो श्रीमती राधा रानी के लिए है। आप ब्रज में जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, कहते हैं ना श्री जी का मंदिर है, श्रीमती राधा रानी का मंदिर है। तो जो श्री शब्द है वो भगवान श्रीमती राधा रानी के लिए है, और कृष्ण भगवान कृष्ण है। तो यहां भी विद्वान अर्थ करते हैं कि श्रील वेद व्यास जी ने जुगल चरणों में मतलब भगवान श्री राधा कृष्ण को वे प्रणाम किए हैं, बहुवचन में प्रणाम किए हैं, नुमह। तो नाम तो यहां भी आया है श्री, श्री कृष्णाय व्यम, जैसे हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, आप हरे कृष्ण बोलते हैं तो इसमें जो हरे शब्द है वो श्रीमती राधा रानी के लिए है। हरि शब्द से हरा शब्द बनता है, और हरा से हरे संबोधन में हरे हो जाता है, ये श्रीमती राधा रानी के लिए। तो हरे कृष्ण मतलब हम राधा कृष्ण का स्मरण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब यहां ध्यान देने की बात है कि भगवान श्री कृष्ण लीला करने के लिए, याद रखिए, 1 से 2 हुए, अकेले आनंद नहीं आएगा उनको। लीला का आस्वादन करने के लिए 1 से 2 हुए, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्य अन्य विलसे रस आस्वादन करी। भगवान 1 से 2 हुए, आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के 3 शक्तियां हैं, एक पहला है आह्लादनी शक्ति, दूसरी है संदनी शक्ति, और तीसरी है समवित शक्ति। ये विष्णु पुराण में भी वर्णन किया गया है। तो ये तीनों शक्तियां भगवान में निहित रहती हैं। श्रीपाद रूप गोस्वामी जी ने भागवत संदर्भ में भगवान की तीनों शक्तियों की व्याख्या इस प्रकार से की है। संधिनी, जिस दिव्य शक्ति से भगवान जगत का पालन करते हैं और पोषण करते हैं उसको संधिनी शक्ति कहते हैं। और समवेत, जिस शक्ति से वे अपनों को जानते हैं और अन्य को जनाते हैं उसको स्वामित शक्ति कहते हैं। और लाभनी शक्ति, अलाभनी शक्ति वो है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी भगवान को जो आनंद प्रदान करती हैं, वैसा आनंद वैसा सुख न गोपियां प्रदान कर सकती हैं, न महिषियां प्रदान कर सकती हैं, न लक्ष्मियां प्रदान कर सकती हैं। तो श्रीमती राधा रानी से जो सुख प्राप्त होता है भगवान को, वह सुख अन्यों से नहीं होता है। कहने का भाव यह है कि भगवान 1 से 2 हुए, और इनके प्राकट्य के बारे में ऐसा कहा जाता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान अपनों को दो रूपों में करते हैं, ये सिद्धांत है, सुनिए ध्यान से। एक वैभव प्रकाश और दूसरा है वैभव विलास। तो वैभव प्रकाश उसे कहा जाता है यदि भगवान समान रूप से अनेक रूप धारण करते हैं, अनेक रूपों को एक ही साथ प्रदर्शित करते हैं, तो उसे वैभव प्रकाश कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी, तो सभी पत्नियों के महल में भगवान एक ही साथ एक ही रूप से विराजमान थे, उसमें कोई अंतर नहीं था, इसे वैभव प्रकाश कहा जाता है। शौभरी मुनि ने भी अपना रूप बनाया था, 50 रूप बनाकर मंदाता की 50 कन्याओं के साथ विवाह किया था, लेकिन उस रूप में भिन्नता थी। जोगी कर सकता है लेकिन एक समान स्वरूप नहीं थे उनके, लेकिन भगवान के पूरे एक स्वरूप मतलब एक ही स्वरूप में थे 16,108 रूपों में, कितना वो रूप बना। और वैभव जो विलास है, जब अनेक रूप एक साथ पृथक पृथक होते हैं तो वे वैभव विलास कहे जाते हैं। जैसे बलराम जी वैकुंठ वासीगण, नारायण चैत्रभुव इत्यादि, ये वैभव विलास हैं। और जो गोपियां हैं, जैसे श्री कृष्ण के अंश वैभव विलास तथा वैभव प्रकाश कहलाते हैं, वैसे ही श्रीमती राधा रानी के अंश हैं, जैसे लक्ष्मियां श्रीमती राधा रानी के वैभव विलास हैं, और महिषियां ये वैभव प्रकाश हैं, और श्रीमती राधा रानी की जो निजी सखियां हैं, जो ब्रज बलाएं हैं, उनके शरीर के प्रत्यक्ष अंश हैं, ये सब श्री कृष्ण के लीलाओं में आनंद प्रदान करने के लिए हैं। ये सिद्धांत है, एक से भगवान दो हुए। तो श्रीमती राधा रानी ऐसा वर्णन किया गया है कि राधा कृष्ण एचे साधा एक ही स्वरूप, लीला रस अस्वादिते धारे दुई रूप, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाई शास्त्र प्रमाण। राधा कृष्ण दोनों एक हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे जैसे कस्तूरी तथा उसका गंध, कस्तूरी है तभी उसमें सुगंध है, अगर कस्तूरी ना हो तो उसमें कोई सुगंध नहीं। अग्नि तथा उष्मा, अग्नि है तभी उसमें प्रकाश उष्मा है, गर्मी है, अगर अग्नि ना हो तो उसमें आंच नहीं, उसमें प्रकाश नहीं। फूल तथा गंध, फूल हो तभी उसमें गंध सुगंध रहेगी, अगर फूल नहीं हो तो इसे सुगंध का कोई महत्व नहीं है। दूध और उसकी ध्वलता, दूध है तभी उज्ज्वलता दिखाई देगी। और पृथ्वी और गंध, पृथ्वी में गंध है, जल और उसकी शीतलता, जल में भी शीतलता है। उसी प्रकार से कहने का भाव यह है कि राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, भगवान कृष्ण ही राधा बने। अगर उनमें कोई अंतर मानता है तो उसे महामूर्ख कहा गया है, कोई अंतर नहीं है, कभी अंतर समझना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये सिद्धांत है कि भगवान सबसे पहले भगवान कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी को प्रकट किया, एक से दो रूप हुए। फिर यहां भी कोई प्रश्न करे, अगर राधा पहले राधा रानी हो तो आप करेंगे नहीं, सब प्रश्न कर सकते, लेकिन वैदिक शास्त्र में तो ऐसा वर्णन नहीं किया गया, किया गया गोविंदम आदि पुरुषम, एकल ईश्वर है कृष्ण, भगवान एक है, एक से दो हुए। अतः श्रीमती राधा रानी का स्वरूप स्वयं लीला करने के लिए धारण किए। तो गोलोक धाम में इस प्रकार से भगवान अपने अंगों से श्रीमती राधा रानी को प्रकट किए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये श्रीमती राधा रानी कैसी हैं? गौरी सहस्राद्धिकापि गौरी, गौरी सहस्राद्धिकापि गौरी, श्यामा तथापि श्रुतसु प्रसिद्धा, श्रूपिणी याप्य श्रूपिणी च सखी कदम वश्य विभाति राधा। वे सहस्त्र सहस्त्र गौरी की अपेक्षा भी अधिक गौर वर्णा है, तथा श्रुतियों में उसे श्यामा नाम से पुकारा गया है। वे सुंदर से सुंदर होकर भी प्राण स्वरूपणी सखियों के लिए प्राण स्वरूप है। श्रीमती राधा रानी की जो गुराई है श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, तप्त कांचन गौरांगी, तपाए हुए सोने की भांति है। जैसे चंपा का पुष्प दिखते हैं ना, उसे तिलापन है, जिस पुष्प पर भ्रमर नहीं बैठते हैं, वो भ्रमर राधा रानी को मां स्वरूप समझते हैं। वैसी गुराई श्रीमती राधा रानी की है। अगर समस्त गोपियों को एक तरफ खड़ी कर दी जाए, महिषियों को लक्ष्मियों को एक तरफ खड़ी कर दी जाए और श्रीमती राधा रानी एक तरफ खड़ी हो, तो ये सब मिल करके भी गोपियां महिषियां लक्ष्मियां श्रीमती राधा रानी की गुराई की समता नहीं कर सकती। जैसे करोड़ों तारे मिल करके चंद्रमा की समता नहीं कर सकते, उसी प्रकार चंद्रमा के आगे उनकी कांति गौण होती है, वैसे श्रीमती राधा रानी की गुराई के आगे अन्य गोपियों की महिषियों की जो शारीरिक कांति है वो गौण है। श्रीमती राधा रानी सबसे स्वरूपरी है, और ऐसा वर्णन किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जितना श्रीमती राधा रानी से प्रसन्न होते हैं सेवा से, उतने दूसरे से नहीं होते हैं। एक बार भगवान कृष्ण ने अपने मन में विचार किया, सारे लोग कहते हैं कि आनंद तथा समस्त रागों से मैं पूर्ण हूं, सारा संसार मुझे आनंद प्रदान मुझसे आनंद प्रदान करता है, क्या कोई ऐसा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे आनंद प्रदान कर सके, जिसमें मुझसे सैकड़ों गुण अधिक गुण हो, वही मेरे मन को आनंदित कर सकता है। मुझसे अधिक गुणवान व्यक्ति तो इस संसार में ढूंढ पाना असंभव है, वो एकमात्र श्रीमती राधा रानी में है। उनको छोड़कर दूसरा कोई मुझे सुख नहीं दे सकता, यद्यपि मेरा सौंदर्य करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित करने वाला है, अतुलनीय है, अद्वितीय है, किंतु राधा रानी के दर्शन से मेरे नेत्रों को जो आनंद प्राप्त होता है वो अन्य किसी से नहीं होता है। मेरी बांसुरी तीनों लोकों को आकर्षित करती है, परंतु मेरे कान श्रीमती राधा रानी के मधुर शब्दों से मुग्ध हो जाते हैं। यद्यपि मेरा शरीर संपूर्ण सृष्टि को सुगंधित देता है, सुगंधित करता है, किंतु राधा रानी के अंगों की सुगंध मेरे मन तथा हृदय को मोहित कर लेती है। इस प्रकार श्री राधिका के सौंदर्य एवं गुण मेरे जीवन और आत्मा है। जब मैं श्रीमती राधा रानी पर दृष्टि डालता हूँ तो मेरी आंखें पूर्ण रूप से तृप्त हो जाती हैं, किंतु मुझे देखकर वह और भी तुष्ट होती हैं। मुझे राधा रानी के मिलने पर जो सुख मिलता है वह अन्यों से मिलने पर प्राप्त सुख से 100 गुना अधिक होता है। तो वो है श्रीमती राधा रानी, जिनको देखने से भगवान पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं। गोपियों से भी सुख प्राप्त करते हैं, महिषियों से भी करते हैं, लेकिन उन लोग के सुख भगवान को पूर्ण रूप से आनंदित नहीं करते हैं। इसलिए श्रीमती राधा रानी कहा जाता है कि ये भगवान की प्राण स्वरूपा हैं। और श्रीमती राधा रानी हैं क्या, इतना तो समझ गए कि इनका प्राकट्य श्रवण कर लिए, कि इनका प्रकट्य गोलोक धाम में हुआ, अपने अंग से भगवान प्रकट किए और राधा नाम हुआ और राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, अभी तक हम लोग इतना सुने। और श्रीमती राधा रानी भगवान की हलादनी शक्ति हैं, और तीन शक्तियों का भी वर्णन सुने, हलादनी शक्ति, संधनी शक्ति, संवित शक्ति। श्रीमती राधा रानी हलादनी शक्ति है, तो श्री कृष्ण अपना विस्तार पुरुष के रूप में करते हैं, ये मार्कबल बात है। श्री कृष्ण अपना विस्तार पुरुष के रूप में करते हैं, अनेक अवतारों तथा अंशों में करते हैं, उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी भी लक्ष्मियां महिषियों तथा ब्रज बलाओं में करती हैं। कहने का भाव यह है कि जितने भी पुरुष रूप में हैं, पुरुष रूप में जो भी सृष्टि है वो भगवान कृष्ण से उनका विस्तार है, और स्त्री स्त्रीलिंग में स्त्री रूप में जो भी सृष्टि है वो श्रीमती राधा रानी के राधा रानी से उनका विस्तार है। अब आए आगे देखें कि भारतवर्ष में अब किस प्रकार से इनका अवतरण हुआ। ये तो गोलोक धाम की बात रही, अब गोलोक धाम से इस भूलोक में श्रीमती राधा रानी का कैसे प्रकट्य हुआ, अब उस प्रसंग को श्रवण करिए। गर्ग संहिता में भी बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। भारतवर्ष में अवतरण की भूमिका बताई गई है कि गोलोक धाम से इस भूलोक में कैसे श्रीमती राधा रानी आए। गर्ग संहिता में ऐसा वर्णन किया गया है कि गोलोक धाम में भी भगवान श्रीकृष्ण के तीन पत्नियां थीं, जैसे श्रीमती राधा रानी, बिजिया मतलब बिरजा नदी जिसको बिरजा नदी कहते हैं, बिरजा देवी, और एक है भूदेवी। ये तीनों भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करती हैं। तो एक दिन भगवान श्रीमती राधा रानी को छोड़कर बिरजा देवी के साथ निकुंजों में विहार करने के लिए चले गए। ये गोलोक धाम की लीला है, वहां नित्य लीला चलती रहती है। तो राधा जी की सखियों ने राधा जी को सूचना दी कि प्रभु बिरजा देवी के साथ निकुंजों में गए हैं। तो यह सुनकर राधा रानी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कहा कि वे मेरे सौत के साथ चले गए हैं मुझे छोड़कर। हाँ, तो क्रोधित होकर के अपनी सखियों के साथ वे निकुंज में गए। तो निकुंज में प्रवेश करने का जो दरवाजा है उस दरवाजे पर श्री रामा को नियुक्त किए थे भगवान कि अंदर किसी को मत आने देना। वो पहरेदार था श्री रामा, भगवान का सेवक था। तो जब श्रीमती राधा रानी गए तो और प्रवेश करना चाहे निकुंज में तो वो जाने नहीं दिए। तब श्रीमती राधा रानी अपने सखियों को आदेश दिया कि इसके ऊपर वेद का प्रहार करो, ऐसे नहीं जाने देगा। तो सखियों ने उसकी धुलाई की और श्री रामा को हटा करके वे निकुंज में प्रवेश किए। तब तक वहां पर बिरजा जो देवी थी वो डर से अदृश्य हो गए, नदी के रूप में परिणत हो गए, भगवान भी अंतर्धान हो गए। तो वहां मिले नहीं तो श्रीमती राधा रानी फिर अपने निवास स्थान पर लौट आए और बिरजा देवी नदी होकर के गोलोक धाम की चारों तरफ बहने लगी। तो भगवान फिर श्री रामा को लेकर श्रीमती राधा रानी के पास आए मिलने के लिए। ये मानवती हो गई कि मान कर गई और इन्होंने व्यंग मारा, जा ऐसे कहा, जाइए बिरजा से ही आप मिलिए, उसी के पास रहिए, वो नदी हो गई ना, आप भी नद बन जाइए। ऐसा उन्होंने कहा। भगवान पर थोड़ा व्यंग बाण चलाया श्रीमती राधा रानी ने। तब भगवान चले गए, बिरजा के पास गए और वहां जाकर के स्वयं बिरजा को नदी से पुनः देवी के रूप में परिणत कर दिए और उनके साथ फिर विहार करने लगे। तो वर्णन है गर्ग संहिता में ये भगवान की दिख्य लीला है। भगवान अखंड ब्रह्मचारी हैं, उनका वीर्य स्खलित नहीं होता है, अपनी दिव्य दृष्टि से वे सृष्टि करते हैं, अपनी इच्छा से। भगवान का सृष्टि हो, सृष्टि तुरंत हो जाएगी। तो बिरजा से भगवान सात पुत्रों को उत्पन्न करते हैं अपनी दिव्य दृष्टि से। तो उनके सात पुत्र हुए और वे सातों पुत्र कहा जाता है कि वे फिर सात समुद्र के रूप में आए। कहते जो बड़ा पुत्र था वो छोटे पुत्र को सब मिलकर के छोटे को मारे। तो वो लीला इसी चल रही थी तो बिरजा देवी को अच्छा नहीं लगा और अपने पुत्र को उन्होंने डांटा और कहा कि तुमने छोटे पुत्र को मारा है, जाओ मैं तुझे अभिशाप देती हूँ, तुम्हारा जल कोई नहीं पिएगा, तुम जाओ पृथ्वी पर समुद्र के रूप में चले जाओ। और अन्य को भी कहा कि तुम लोग भी अन्य रूप अपना स्वरूप धारण कर लो। तो सात समुद्र हैं, ये सात रूप में आ गए। प्रश्न अब आपको संशय होगा कि सात समुद्र तो आ गए तो फिर राजा सगर के पुत्रों ने मतलब पृथ्वी को खुदाई किया या महाराज प्रिय व्रत के रथ के चक्कों से सात समुद्र बन गए, तो वर्णन आता है कि वे लोग आकर के उसमें प्रविष्ट हो गए, अंत रूप से उसमें प्रविष्ट हो गए, तो ये सात समुद्र बन गए। तो आज भी समुद्र का जल देखे कोई पान नहीं करता है, ये बिरजा देवी का भी साफ है, कोई जल पान नहीं करेगा, खारा है इसका जल। और भी कथाएं हैं, लेकिन अब आगे सुनिए। तो बिरजा देवी तो ये सातों तो समुद्र बन गए, और बिरजा देवी से भगवान मिले, इसके बाद श्री रामा को जब भगवान चले गए, तो श्री रामा तो द्वारपाल था, तब भगवान चले गए तो इस रिदामा को अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने कहा, श्री रामा ने कहा, आवेश में कहा, आपने आप जानती हुई कौन है, ये साक्षात पूर्ण ब्रह्म है, और इनमें इतनी शक्ति है कि आप जैसी करोड़ों देवियों को ये प्रकट कर सकते हैं, और आपने उनका अपमान किया, उनको यहां से भगा दिया, ये आपने अच्छा नहीं किया। तब श्रीमती राधा रानी ने कहा, आवेशित होकर कहा, मूर्ख कहीं का, तुम बाप की प्रशंसा करते हो, पिता की प्रशंसा करते हो, और मां की निंदा करते हो। तुम मेरी निंदा करते हो, पिता की प्रशंसा करते हो, चाहो ये तुम्हारी आश्री बुद्धि है, मैं तुझे अभिशाप देती हूं, तुम असुरूप में पृथ्वी, तुम असुर हो जाओ और असुरूप में पृथ्वी पर जन्म लो। जब इस प्रकार श्रीमती राधा रानी ने श्रीदामा को अभिशाप दिया, तो वही श्रीदामा संघचूर के रूप में पृथ्वी पर आया। इसके बाद श्रीदामा ने भी अभिशाप दिया श्रीमती राधा रानी को, जैसे आप मुझे भगवान कृष्ण से विलग कर रही हैं, अलग कर रही हैं, वैसे मैं भी आपको अभिशाप देता हूं कि आप भी भगवान श्री कृष्ण से 100 वर्ष के लिए वियोग में रहेगी, उनसे मिलन नहीं होगा। ऐसा कहकर श्रीदामा रोने लगा। तब तक श्रीमती राधा रानी भी पश्चाताप करने लगे हैं, और ये भी रोने लगे दोनों। तब तक अकस्मात भगवान कृष्ण वहां प्रकट हो गए, दोनों के बीच में, श्रीमती राधा रानी और श्रीदामा के बीच में वहां भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, और कहे कि श्रीदामा तुम जाओ भूलोक में, तुम संघचूर नाम का असुर बनो, जब मैं गोपियों के साथ रास विहार करूंगा तब देखेंगे संघचूर नाम का असुर गोपियों के साथ छेड़खानी करता है, तो भगवान उसका वध करते हैं, कहते हैं उसके बाद फिर तुम मेरे धाम में चले जाओगे, तुम मेरा अंश आ जाओगे। और श्रीमती राधा रानी से कहे तुम 100 वर्षों के लिए मुझसे तुम्हारा वियोग होगा, लेकिन मैं तुमसे मिलता रहूंगा, भगवान ने आश्वासन दिया श्रीमती राधा रानी को। तो इस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि भगवान 129 वर्ष इस भूलोक में रहे, और क्योंकि मथुरा में ही तो 18 साल हो गया, जोड़िए ऐसे 125 वर्ष कहा जाता है, लेकिन कुछ विद्वान लोग 129 वर्ष बताते हैं, और 100 वर्ष भगवान द्वारका में रहे, और ब्रज की गोपियां तो यहां वृंदावन में रहे। तो यही श्री रामा का अभिशाप लागू हुआ, माने 100 वर्ष तक वियोग रहा। तो इस प्रकार से उनकी भूमिका बनी, तो भगवान ने कहा अब तुम भूलोक में चल करके अब मेरी लीला में सहायता करो। तो वही श्रीमती राधा रानी अब देखिए इस भूलोक में आती हैं। तो सुचंद्र और कलावती यही इस भूलोक में श्री विश्वभानु और कीर्ति के रूप में जन्म लेते हैं। सुचंद्र और कलावती के बारे में ग्रंथ संहिता वर्णन किया गया है कि महाभाग सुचंद्र राजा नृग के पुत्र थे, और राजा नृग ये इक्ष्वाकु के पुत्र थे। तो ये उन्हें साक्षात भगवान का अंश माना जाता है राजा नृग को। तो पूर्व काल में अरेमा, सुनिए, अरेमा पितरों के यहाँ 3 मानसिक कन्याएं उत्पन्न हुई, स्वर्ग लोक की बातें हैं। तो उनका नाम था, वे सभी परम सुंदरी थी, जिनके नाम थे कलावती, रत्नमाला और मेनका। तो पितरों ने स्वेच्छा से कलावती का हाथ सुचंद्र के हाथ में दे दिया, और रत्नमाला को विदेह राज को दिया, जनक को दिया, और मेनका को हिमालय के हाथ में दिया, अर्पित कर दिया, जिसे पार्वती का जन्म हुआ। तो रत्नमाला से सीता जी, मेनका के गर्भ में पार्वती हुए, और कलावती को साथ लेकर ये सुचंद्र जी गोमती नदी के तट पर नैमिषारण्य वन में चले गए, और वहां पर वे देवताओं के वर्ष के अनुसार 12 वर्षों तक वे तप किए। तब से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर बोले वर मांगो, क्या चाहिए। तो ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर पहले वो तप किए थे तो उनके शरीर सूख गए थे, जल का छिटा दिए तो उनके शरीर पर जो बिंबे पड़ गए थे, दीमक के ढेर लग गए थे, सब हट गए और सुंदर स्वरूप में वे आए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या चाहिए, वरदान मांगिए। तो वे मांगे, सुचंद्र जी ये वरदान मांगे कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। तो यह बात कलावती जी को अच्छी नहीं लगी, कहा कि ब्रह्मा जी से कहे ये हमारे पति हैं और ये मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे तो मैं तो पति साहचार्य से वंचित रह जाऊंगी, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको अभिशाप दे दूंगी। तो ब्रह्मा जी डर गए और कहे कि देवी मेरे मुख से जो बातें निकल वाणी निकल गई अभी लौट नहीं सकती है, मैं आप दोनों को मंगल कामना करता हूं, आप दोनों स्वर्ग लोक में जाओ और वहां पर तुम अपने पति के साथ विषय भोग करो, अपने पति के साथ रहो। इसके बाद कालांतर में पुनः भारत वर्ष में गंगा और यमुना नदियों के बीच में तुम दोनों जाकर के जन्म लो। तो वही सुचंद्र और कलावती ये दोनों इस भूलोक में आकर के वृषभानु और कृष्णदा के रूप में इनका जन्म हुआ। तो सुचंद्र जी वृषभानु गोप बने और कलावती जो थी वे कीर्तिदा कीर्ति रानी के रूप में वो जन्म ले। अब वृषभानु जी और कलावती इन दोनों का जो संबंध है नंद महाराज जी कराए, दोनों की शादी नंद महाराज ने कराया, संबंध जोड़ा। तो वृषभानु जी कहाँ रहते हैं, बरसाना में रहते हैं, बरसाना को वृषभानुपुर कहते हैं, श्रीमती राधा रानी की लीला भूमि है बरसाना और उनकी धर्मपत्नी का नाम है कीर्ति कुमारी नहीं कीर्तिदा देवी। तो ऐसा प्रसंग मिलता है। अब देखिए कैसे अवतार की भूमिका बनती है। आप सभी इस बात को जानते हैं कि जो रावल ग्राम है वो श्रीमती राधा रानी की जन्मभूमि है और जो बरसाना है वो लीला भूमि है। तो ब्रजवासी गण ऐसा वर्णन करते हैं, कहते हैं ब्रज में एक प्रसिद्ध कथा है कि वृषभानु गोप की जो धर्म पत्नी थी कीर्तिदा जी, जब वह गर्भिणी हुए तो श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन के अवसर पर अपने मायके मतलब बरसाना से वे रावल ग्राम में आई, अपने मायके में आई और अपने भाई को राखी बांधने के लिए आई थी। तो उस समय वो गर्भिणी अवस्था में थी। तो ठीक उसी अवसर पर वृषभानु गोप भी अपनी धर्म पत्नी को लेने के लिए आए। वो तो अवसर बीत गया, इसके बाद वो आए अपनी पत्नी को लेने के लिए, रक्षाबंधन बीत गया। जब आए तो वृषभानु गोप का नियम था कि वो प्रातः काल उठ करके यमुना जी में स्नान करने के लिए जाते थे, उनका नियम था। तो रावल गांव में गए, अपने ससुराल गए तो प्रातः काल जगे और यमुना जी में स्नान करने के लिए गए और उनकी धर्म पत्नी भी वहीं थी, तो गर्भिणी अवस्था में थे। तब विद्वान लोग एक वर्णन करते हैं कि कीर्तिदा जब वे स्नान कर रहे थे तो कीर्तिदा देवी के गर्भ में जो तेज था वो तेज निकल करके सीधे उस सरोवर में गया और यमुना जी में गया और उसमें एक बहुत सुंदर कमल पुष्प तैर रहा था, उसी कमल पुष्प में वे प्रविष्ट हो गए और उनके शरीर से ज्योत्सा निकल रहे थे, प्रकाश निकल रहा था, तो कमल कोश के अंदर थे। और जब वृषभानु गोप स्नान कर रहे थे तो देखे इस कमल कोश के अंदर सुंदर बालिका है, हैं बहुत सुंदर सुकुमारी बालिका है जिनके शरीर से तेज निकल रहा है, ज्योत्सना फैल रही है। तब कमल कोश से श्रीमती राधा रानी को गोद में ले लिए और ले आए और अपने धर्म पत्नी से कहे अब तुम रावल से अपने घर बरसाने चलो। तो अपनी धर्म पत्नी को लेकर के फिर वहां से वे बरसाना आए और बरसाने में श्रीमती राधा रानी का जन्मोत्सव मतलब मनाया गया। ऐसे उनकी जन्मभूमि रावल में है और बरसाना लीला भूमि है। और कुछ विद्वान लोग ये कहते हैं कि जब इस भानुगोप कल्प भेद से जो भी हो, जब इस भानुगोप मतलब बरसाना में रहते थे तो एक विश्वानु कुंड है, विश्वानु कुंड में वो स्नान करने के लिए रोज जाते थे प्रतिदिन। तो उस जब कुंड में स्नान करने के लिए गए तो उस कुंड में एक कमल में एक बालिका दिखाई दी, कमल कोश में बालिका दिखाई दी। तो फिर वहां से उस बालिका को वो प्राप्त किए, श्रीमती राधा रानी को प्राप्त किए। तो विद्वानों का ये मत है। तो श्रीमती राधा रानी का जो प्राकट्य है कहा जाता है कि वो अयोनिजा है, माने रज वीर्य से भगवान का जन्म नहीं होता है न उनकी आराधनी शक्ति का जन्म होता है। ऐसे भी आप जानते हैं कि श्रीमती सीता देवी का भी जन्म धरती से हुआ था, खीर खा करके चारों भाइयों का जन्म हुआ था। रज वीर से भगवान अलग होते, माया गुण को पार, माया से तीनों गुणों से और इंद्रियों से परे होते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम, उनका जन्म कर्म दिव्य है। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी का जो जन्म है वो अयोनिजा है और कमल कोष में स्वतः वो प्रकट हुई और इस प्रकार से वो वृषभानुगोप को प्राप्त हुई। अब थोड़ी सी और कथा लोग बताते हैं विद्वान लोग, हमारे मैंने श्रीपद रूप गोस्वामी ने ऐसा वर्णन किया है, उज्ज्वल नीलमणि में भी ऐसे वर्णन आता है। समय तो बोलिए जैसा कहिए, आप लोगों ने सुना होगा इस कथा को। विंध्य पर्वत को भी कथा को आप लोगों ने सुना होगा। हाँ अब ठीक है, विंध्य पर्वत के यहाँ भी श्रीमती राधा रानी मतलब उनकी धर्म पत्नी के गर्भ में जोग माया ने प्रवेश कराया था। और ऐसा भी वर्णन आता है कि कंस को जब देवी ने आकाशवाणी की थी कि तुझको मारने वाला कहीं ब्रज में जन्म ले चुका है, तो आकाशवाणी ने यह भी कहा कि साथ साथ कुछ देवियां भी प्रकट होगी, श्रीमती राधा रानी और भी देवियों का प्रकट होगा और ऐसी देवियों प्रकट होगी कि उसको जो वर्णन करेगा अमर हो जाएगा। तो कंस भी श्रीमती राधा रानी के साथ विवाह करना चाहता था, वो चाहता था कि मुझे प्राप्त हो है, इसलिए उन्होंने पुतना को विदा किया था। तब पुतना गई और वहां से कहा जाता है कि श्रीमती राधा रानी को मतलब वहां से अपहरण करके और भी देवियों को उल्ला रहे थे अपनी जोग शक्ति से। तो विंध्य पर्वत ने अपने पुरोहित को आदेश दिया, तुम ये काम करो कि जो पुतना लेकर जा रही है कन्याओं को, तुम ऐसा मंत्र पढ़ो कि वे कन्याओं को छोड़ दे, न ले जा सके। तो पुरोहित मंत्र पढ़े और मंत्र के प्रभाव से वो कन्याएं सब पुतना के हाथों से छूट गई और जमुना जी में मतलब गिर पड़े। तो उसमें भी विद्वान लोग कहते हैं कि वो भी जमुना जी में गिरी तो वो भी विश्वानुगोप को मतलब इसे प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से ये प्राकृतिक की कथाएं मिलती हैं। तो आपने सुना होगा मुखरा तारा प्रोणमासी जटिला कुटिला का नाम सुना होगा, उज्ज्वल नीलमणि में आता है। आपके अंदर एक जिज्ञासा होगी, बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि श्रीमती राधा रानी की जो शादी है वो अभिमन्यु गोप से हुई थी। तो जटिला और कुटिला का वर्णन आता है, जटिला जावट ग्राम में रहती थी और जटिला की एक कन्या है जिनका नाम है कुटिला और जटिला को एक पुत्र है जिनका नाम है अभिमन्यु। तो अभिमन्यु और कुटिला ये भाई बहन है, तो ये राधा रानी की कुटिला जो है ये ननद लगती है। तो अभिमन्यु जो गोप है तो इनको इनकी शादी पूर्णमासी ने कराया था। पूर्णमासी कौन थी, कहते हैं कि ये सांदीपनी जी की माता थी, नारद जी की शिष्या थी और सर्व सिद्धि वो जोग माया का कार्य करती थी, वो सब कुछ जानती थी। तो उन्होंने अभिमन्यु गोप के साथ माइक संबंध स्थापित किया था। तो विद्वान लोग वर्णन करते हैं कि श्रीमती राधा रानी का जो विवाह अभिमन्यु के साथ हुआ था, कहते हैं कि जैसे रावण ने असली सीता को अपहरण नहीं किया, माया की सीता को अपहरण किया था, उसी प्रकार से जो असली राधा रानी है उनको उन्होंने उनके साथ विवाह नहीं किया था, उनकी छाया स्वरूप को मतलब माइक राधा को ऐसा समझ लीजिए, इसके साथ उनका ऐसा संबंध हुआ था। लेकिन श्रीमती राधा रानी के साथ उनका शारीरिक संबंध नहीं था और उसमें भी भगवान की जो योग माया है वो श्रीमती राधा रानी से माया स्वरूप उसे भी मिलने नहीं देते थे, हमेशा इंगेज रखती थी, अवसर ही नहीं देती थी उनको मिलने के लिए। कहने का यह भाव है, विद्वान कहते हैं कि जैसे रावण ने छाया सीता को मतलब माया सीता को हरण करके ले गया था, उसी प्रकार से ऐसा यहाँ भी समझना चाहिए, वास्तविक श्रीमती राधा रानी के साथ अभिमन्यु का विवाह नहीं था, वो माइक संबंध था। तो इसलिए इसमें ज्यादा तर्क करने की कोई जरूरत नहीं। और इस प्रकार से रावल ग्राम में ये वर्णन करते हैं। और भी कथाएं ऐसी हैं कि कुछ लोग ये करते हैं, कहते हैं कि क्या श्रीमती राधा रानी का विवाह नहीं हुआ था। ब्रह्म गर्ग संहिता में वर्णन है कि श्रीमती राधा रानी का विवाह बाल्य काल में भगवान श्री कृष्ण के साथ भांडीर वन में ब्रह्मा जी कराए थे। विशेष जानकारी के लिए आप गर्ग संहिता पढ़ लें, उसमें क्लियर वर्णन किया गया है। श्रीमती राधा रानी का विवाह बाल्यावस्था में ब्रह्मा जी राधा रानी के साथ कराए थे, इसलिए मन में कोई संशय नहीं रखना चाहिए। अब जो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं वे नहीं जानते हैं, और ऐसे तो उनकी नित्य आलापनी शक्ति है, गोलोक धाम से उनका प्राकट्य है, तो इस भूलोक में इस प्रकार से सुचंद्र और कलावती ये दोनों ही वृषभानु और कृदा नाम से गोप गोपी हुए और उन्हीं के वहां श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य हुआ। हाँ बहुत सुंदर, आपने अच्छा याद दिला दिया। प्रेम से बोलिए श्रीमती राधा रानी की जय। तो इस प्रकार से इस भूलोक गोलोक धाम में और इस भूलोक में श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव हुआ और आज इनका जन्म महोत्सव है। आइए जन्म महोत्सव का फिर हम आनंद लूटें, जुगल प्रेम का गान करके अपने जीवन को धन्य करें। हरे कृष्णा। हाँ बजाइए, मृदंग बजाइए, दो गान गाएंगे, आनंद आएगा। राधा रानी की जय महारानी की जय तो होगा ही, लेकिन पहले इसको गा लें। कृष्ण प्रेम मयि राधा, कृष्ण प्रेम मयि राधा, राधा प्रेम मयो हरि, राधा प्रेम मयो हरि, जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम, जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। ताली बजाइए इसे। कृष्ण जय हो। कृष्णस्य द्रविणं राधा, कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधाया द्रविणं हरे, राधाया द्रविणं हरे, जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम, जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण प्राण मयि राधा, कृष्ण प्राण मयि राधा, राधा प्राण मयो हरे, राधा प्राण मयो हरे, जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम, जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण द्रव्यमयि राधा, कृष्ण द्रव्यमयि राधा, राधा द्रव्यमयो हरे, राधा द्रव्यमयो हरे जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम मम कृष्ण बृहस्थिता राधा कृष्ण बृहस्थिता राधा राधा बृहस्थितो हरे राधा बृहस्थितो हरे जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण चित्ति स्थिता राधा कृष्ण चित्ति स्थिता राधा राधा चित्त स्थितो हरे राधा चित्त स्थितो हरे जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम नीलांबर धरा राधा नीलांबर धरा राधा पीतांबर धरो हरे पीतांबर धरो हरे जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम वृंदावनेश्वरी राधा वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वर कृष्ण वृंदावनेश्वर जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण
गतिर्मम जय हो बरसाने वाली की जय हो मानो दुलारी की जय हो ताली बजाइए सभी लोग
राधा रानी की जय महारानी की जय
राधा रानी की जय महारानी की जय
राधा रानी के जय महारानी की जय
राधा रानी की जय महारानी की जय
बोलो बरसाने वाली की जय 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 बोलो बरसाने
वाली की जय
जय हो बोलो बरसाने वाली की जय 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 बोलो श्यामा गोरी की जय नित किशोरी की जय श्यामा गोरी की
बोलिए
है श्यामा गोरी की जय नित किशोरी की जय श्यामा गोरी की जय नित किशोरी की जय प्रीतम जोरी श्री राधे की जय 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 प्रीतम जोरी श्री राधा की जय हाँ प्रीतम जोरी श्री राधा की जय 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 प्रीतम जोरी राधा रानी की जय महारानी की जय
राधा रानी की जय महारानी
के जय बोलो भानु दुलारी की जय जय जय
बोलो भानु दुलारी की जय
जय बोलो कीर्ति कुमारी की जय 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 बोलो कीर्ति कुमारी की जय जय नवरंगी की जय नव त्रिभंगी की जय नव नवरंगी की जय नव त्रिभंगी की जय
बोलो श्याम सुवंगी की जय 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 बोलो श्याम जय प्राण प्यारी की जय रूप उजारी की जय प्राण प्यारी की जय रूप उजारी की जय सुकुमारी श्री राधे की जय 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 सुकुमारी श्री राधे की जय 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 राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी के जय बोलो भानो दुलारी की जय 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 बोलो भानो जय शोभा श्रेणी की जय मोहा बैनी की जय शोभा मोहा बैनी है शोभा श्रेणी की जय मोहा बैनी की जय शोभा कोकिल बैनी श्री राधे की जय 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 कोकिल बैनी श्री राधे की जय हो राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी के जय बोलो बरसाने वाली की जय 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 बोलो बरसाने
वाली की जय जय
जय चंदा बदनी की जय कुंदा रदनी की जय चंदा के जय चंदा बदनी की जय कुंदा रदनी की जय चंदा बदनी की जय कुंदा रदनी की जय शोभा सदनी श्री राधे की जय 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 शोभा सदनी श्री राधे की जय 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 राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी हे हंसा गमनी की जय राजत रमणी की जय हंसा गमनी की जय राजत बमड़ी की जय क्रीड़ा कमनी श्री राधे की जय 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 क्रीड़ा कमनी श्री राधे की जय जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी के जय बोलो बरसाने वाली की जय 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 बोलो बरसाने जय जय कंचन वेली की जय रस रैली की जय कंचन वेली की जय रस रैली की जय बोलो अलवेली श्री राधा की जय 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 बोलो अलवेली श्री राधा की जय रस बिहारणी की जय रस विस्तारणी की जय रस बिहारणी की जय रस विस्तारणी की जय पिय उर्धारणी श्री राधे की जय 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 पिय उर्धारणी श्री राधे की जय 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 राधा रानी की जय महारानी के जय राधा फास्ट हो जाइए हरि हरि बोल राधा रानी के जय महारानी के जय राधा रानी की जय महारानी के जय बोलो बरसाने वाली की जय 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 बोलो बरसाने वाली की जय
और फास्ट जितना पावर है उतना बजाइए फास्ट बजाइए और जाइए तेज जाइए
बोलिए जय जय श्री राधे हो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा राधा प्राण प्राण धन राधा श्री राधा
प्राण धन राधा श्री राधा
श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा रे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा राधा जीवन धन राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा
गोविंद राधे 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 जय श्री राधे, ताली बजाइए पूरा,
राधे राधे
राधे जय श्री राधे, गोविंद राधे 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 जय श्री राधे, गोविंद राधे 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 त्रिभुवन राधे 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 जय श्री राधे, गोविंद 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 राधे
महामहोत्सव के श्रीमती वृंदा महारानी के जय, भानु दुलारे के जय, कीर्ति कुमारे के जय, जय जय श्री राधे।
धन्यवाद। हरे कृष्ण।